सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं चल रहा हूं। तीन चार जो खबरें हैं इस बीच में जो आई हैं और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं किसी एक को आज के मुख्य विषय में शामिल नहीं कर रहा हूं। आप इन सभी को मुख्य विषय में शामिल माने, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आंसर राइटिंग पर हम लोग बातें कर रहे थे और तीन दिन तक हम लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर बातें की हैं। कल भी मुझे उसी को लेकर के बहुत सारे मेल पढ़ने को मिले। आप लोग थोड़ा सा गंभीर होइए। अब उन मेल्स के लिखने का क्या अर्थ है? जब मैं समीक्षा ऑलरेडी बता चुका हूं तो आपके लिखने का अब कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो दोस्तों प्लीज, अगर आप सच में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिंसियर तैयारी करने वाले नौजवान हैं तो आपको सतर्कता बरतनी चाहिए इमीडिएट, जैसे कि एक फौजी होता है कि करना है तो बस करना है। अगर आप चीजों को अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, तो मुझे नहीं मालूम कि दूसरी जगह आप कितने सफल होंगे, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह रह ही जाएगा, कमी रह ही जाएगी। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से यह दिखाई दे कि आप ढीले ढाले हैं। आप ये मुझे बताइए कि क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ढीले ढाले कलेक्टर को पसंद करेंगे या ढीले ढाले एसपी को पसंद करेंगे? नहीं ना, और आप वही तो बनने जा रहे हैं, लेकिन आपका जो रुख है वो इतना ढीला ढाला है। तो प्लीज इन सब पर भी विचार कीजिए। पर्सनालिटी यही होती है, मानसिक मजबूती यही होती है, और अगर मानसिक रूप से हम अपने को मजबूत नहीं बना पाएंगे तो ऐसा मत समझिए कि जब पोस्टिंग होगी तब कर लेंगे। नहीं, तैयारी के मामले में भी वो मानसिक मजबूती काम आती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए ना, हमारे दिमाग में अट्रैक्ट करने की ताकत होनी चाहिए नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को। लेकिन अगर वो कमजोर है, मूलभूत रूप से ही कमजोर है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन नॉलेज को अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने के बाद वो गैदर करके अपने पास रख सकेगी, क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर चीज कैसे कितना इंपॉर्टेंट काम कर सकेगी? प्लीज इस पर आप सब विचार करें, गंभीरता से विचार करें। तो दोस्तों, अब जो कुछ खबरें हैं आइए उन्हें देख लेते हैं। इस बीच में आपने देखा कि जो प्रवासी हमारे अपने लोग होते हैं, जो अपने देश में ही दूसरी जगहों पर चले जाते हैं चाहे नौकरी करने या मजदूरी करने, अब वो वोट दे सकें इसके लिए एक अलग तरह से वोटिंग मशीन की व्यवस्था की गई थी। उस पर फिर राजनीतिक दलों को बुलाया गया कि उनकी इच्छा जानी जा सके, उनकी राय ली जा सके। तो दोस्तों, उस पर कुछ आपत्तियां आई हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब पहले ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई थी उस समय एक प्रश्न मेंस में पूछा गया था। अब चूंकि इस तरह की मशीन आ रही है जो प्रवासियों को मतदान का अधिकार दे सकेगी, सुविधा दे सकेगी, तो हम कह सकते हैं कि इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में। प्री में तो पूछे जाने की संभावना नहीं लग रही है। तो जब राजनीतिक दलों से इस पर राय मांगी गई तो कुछ तथ्य उभर कर आए हैं। इस बीच में मैंने न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की हैं, कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी आए थे, वे भी आपको दिए हैं। डेफिनेटली आप सबने उन्हें पढ़ा होगा, तो मैं बहुत विस्तार में इसीलिए नहीं जा रहा हूं। जो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपत्तियां आई हैं, देखिए वो क्या है। पहली बात तो यह है कि जब ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले, उससे लेकर के अभी तक लगातार इन मशीनों की सत्यता पर संदिग्धता व्यक्त की जा रही है, आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि बाकायदे इसमें हेराफेरी की जा सकती है। तो राजनीतिक दलों का यह कहना था कि जब उन्हीं मशीनों के बारे में जो शंकाएं हैं, निर्वाचन आयोग जब उनका ही अभी तक समाधान नहीं कर सका है, तो अब ये नई मशीन आने का लाने का क्या मतलब है? हम इस पर भी आशंका व्यक्त करते हैं। तो पहली बात तो उनकी ठीक है, चलिए। जो दूसरा तथ्य है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक भोपाल निर्वाचन क्षेत्र है और भोपाल के जो बहुत से मजदूर हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, कुछ लोग बेंगलोर चले गए हैं, कुछ लोग तमिलनाडु चले गए हैं, कुछ लोग उड़ीसा चले गए हैं, इस तरह से अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। अब यहां मतदान की एक तिथि है, तो राजनेताओं का यह कहना है कि भाई हम उनके बीच में जा करके उनको कहां कहां ढूंढ करके प्रचार कैसे कर सकेंगे अपनी पार्टी के बारे में, अपने बारे में कैसे उनको बताएंगे? तो बिना प्रचार के ही उनको बस सिर्फ ये अधिकार दे दिया गया है कि वो मतदान कर दें, तो जो मन में आए वो कर दें। वो भाई हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। देखिए मताधिकार का तो सही प्रयोग तभी होगा ना कि जब राजनीतिक दल अपने विचारों से उन्हें अवगत कराएं और उसमें फिर जो मतदाता है निर्णय ले, तो हम उन तक प्रचार कैसे करेंगे? तो बात तो बिल्कुल सही है कि कैसे प्रचार किया जाएगा उन तक, वो तो संभव नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उभर कर आए हैं। छोटे छोटे और भी जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो है, लेकिन मैं ज्यादा पर नहीं जा रहा हूं। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, खासकर शहरी मतदाताओं में जबरदस्त रूप से उदासीनता देखने को मिल रही है। तो चुनाव आयोग का ये कहना सही है कि भाई हमारे इतने सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो उन्हें भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो वहां तो वो बिल्कुल गलत नहीं है और डेमोक्रेसी में प्रतिशत तो मायने रखता ही है। चाहे 10% ही मतदान हो, सबसे ज्यादा वोट पाने वाला तो हमारे हिसाब से जीत ही जाता है, प्रतिनिधि बनी जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बहुत कम प्रतिशत मतदान हुआ है और उसमें भी थोड़े से प्रतिशत पाने वाला व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगता है, तो कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र की जो आत्मा है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो खड़ा होता ही है। इस पर आगे अभी और भी मुझे लगता है कि आर्टिकल्स वगैरह शायद आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान में रखें। दोस्तों दूसरी जो एक बड़ी खबर थी वो ये थी कि आपको मालूम है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच में किस तरीके से एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। सरकार चाहती है कि कॉलेजियम व्यवस्था की जगह पर एक अलग तरह की प्रक्रिया शुरू हो, तो अब एक और पत्र विधि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। सुप्रीम कोर्ट को कही गई है बात, वो ये है कि कॉलेजियम तो आप जानते हैं कि उसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चार और न्यायाधीश होते हैं, है ना, वो डिसाइड करते हैं कि किनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, और वो सरकार को रिकमेंड करते हैं और सरकार फिर उनमें से स्वीकृति दे देती है। तो उन्हीं में से ही सरकार स्वीकृति देने के लिए बाध्य होती है। इसको लेकर के जो सरकार है अभी जो वो सहमत नहीं है, उसने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग भी बनाया था ताकि सही तरीके से उनका चयन किया जा सके, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। आप बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में जानते हैं। अभी जो विधि मंत्रालय ने जो पत्र लिखा है उसमें कहा यह गया है कि ठीक है, कॉलेजियम के माध्यम से यदि न्यायिक नियुक्तियां होनी है तो ये जो कॉलेजियम है ये किनके नाम पर विचार करे, तो उनके नाम पर विचार करने के लिए कौन से नाम होने चाहिए, इसके लिए एक समिति बनाई जाए। अब वो जो समिति है उस समिति का नाम है खोज सह मूल्यांकन समिति, इंग्लिश में आप कह सकते हैं सर्च कम इवेल्युएशन कमेटी। यानी कि ये जो समिति होगी वो पहले सर्च करेगी कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक बार उसने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद फिर उनको इवेल्युएट करेगी कि इनमें से किस किस का कैरियर ठीक है, कौन से अच्छे हैं, और सिलेक्शन के बाद फिर वह जो समिति होगी वह बकायदे कॉलेजियम को भेज देगी, फिर वो निर्णय लें कि इसमें से किसका किसका रिकमेंडेशन करना है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात सरकार ने कही है और वो ये है कि ये जो समिति होगी खोज सह मूल्यांकन समिति, उसमें सरकार भी एक पक्ष होगी, यानी कि सरकार का एक प्रतिनिधि या कई प्रतिनिधि होंगे। अब आप देखिए कि सरकार का प्रतिनिधि होगा, फिर से राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पत्र चला गया है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। ज्यादातर तो यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि यदि इस समिति के विचार को स्वीकार कर लिया गया तो डेफिनेटली सरकार ऐसी स्थिति में होगी कि वो न्यायपालिका पर दबाव डाल सके और यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी। इसी आधार पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पत्र को स्वीकार न करे। देखते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस खबर पर भी आपको नजर रखनी है। फ्रेंड्स इस बीच में आपको मालूम है कि दावोस में एक सम्मेलन चल रहा है जो हर साल होता है, विश्व आर्थिक मंच। उसमें ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, पहले ही दिन उसने एक रिपोर्ट जारी की है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुना होगा आपने जो डार्विन हुए हैं, चार्ल्स डार्विन, उनकी एक थ्योरी का नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहां पर उन्होंने उसी पैटर्न से लिया सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, यानी कि जो रिचेस्ट लोग हैं वही अब इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी बात कही है और मुझे लगता है कि इसे आपको नोट भी कर लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वो ये है कि भारत में जो सबसे धनी 1% लोग हैं उनकी जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो देश की कुल संपत्ति का 40% से भी ज्यादा है। चलिए हम 40% के आसपास मान लेते हैं, यानी 1% लोगों के पास देश की कुल 40% संपत्ति का केंद्रीयकरण है। सोच के देखिए, असमानता दिखाई दे रही है। और नीचे के जो 50% लोग हैं, नीचे के एकदम नीचे गरीब से गरीब को ले लीजिए, वहां से ऊपर 50% जो आबादी है, टोटल की 50% आबादी कह लीजिए, उसके पास केवल 3% संपत्ति है। केवल 3%, 50% लोगों के पास 3% और 1% लोगों के पास 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आपको नोट कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो उसमें कही गई वो ये कही गई कि जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम सैलरी मिलती है, या यूं कह लीजिए कि धन मिलता है, प्रतिदान मिलता है कामगारों को। जैसे पुरुष को यदि 1 रुपये मिल रहा है तो महिलाओं को मात्र 63 पैसे मिलते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट आपके सिलेबस में है और उस पर अक्सर प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तीसरा और आखिरी जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, इसमें कहा गया है कि जो गरीब है वो सरकार को अधिक टैक्स देता है अमीरों की तुलना में। अब आपको लगेगा कि उसके पास टैक्स देने के लिए पैसा कहां से आया। वो जो आवश्यक वस्तुएं खरीदे, आप जानते हैं कि हर चीज पर टैक्स लगता है, तो वो आवश्यक वस्तुओं पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, और आवश्यक वस्तुएं टैक्स फ्री तो है नहीं, सब पर टैक्स लगता है, तो वो ज्यादा टैक्स देता है। अमीर लोग तो कम टैक्स देते हैं, ये भी एक तथ्य इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जो इस बीच में हम लोग जिस पर चर्चा नहीं कर पा रहे थे, तो मुख्य विषय आप इन सब में से किसी को भी समझ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, नीतीश राज साहेबगंज बिहार से, अभिषेक बहुचरा उत्तर प्रदेश से, और शशि सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।